आपकी व्याकरण की भी हम लेंगे, क्योंकि हमने आप बहुत सरल व्याकरण शुरू की है पूज्य माता के निर्देश से, लेकिन उसकी तारीख हम बाद में घोषित करेंगे। अब मैं आती हूँ आपको व्याकरण की क्लास में लेकर के। व्याकरण में आपने भूमिका के रूप में सात विभक्तियों के नाम सुने थे, पढ़े थे, और उसके बाद में अकारांत पुल्लिंग में जिन शब्द पढ़ा, उसके बाद धर्म शब्द को सातों विभक्तियों में एक ही श्लोक के द्वारा जाना, पुनः सात होते ये विभक्तियां और एक वचन द्विवचन बहुवचन के रूप जाने, उसके बाद क्रिया में नम धातु के लट लकार की क्रियाएं जानी थी, तो कर्ता और क्रिया का प्रयोग भी उसमें किया गया। अब हम आते हैं आपको लेकर के सूत्रों की ओर। तो सबसे पहले यह है असली में कातंत्र रूपमाला नाम की व्याकरण, जिस व्याकरण को प्रारंभ में ही पूज्य गणी ज्ञानमती माताई ने सन 1953 की पहले चातुर्मास में पढ़ करके अपने ज्ञान की नींव को मजबूत किया है, तो उसी व्याकरण के छोटे से स्वरूप को हमने अभी आपको भिजवाया है, और आगे भी हम इसके और सूत्रों का प्रकाशित भाग आपको सॉफ्ट मैटर के रूप में देंगे। पहला सूत्र है सिद्धो वर्ण समाम्नायः,
सिद्धो वर्ण समाम्नायः,
सिद्धो वर्ण समाम्नायः,
सिद्धो वर्ण समाम्नायः।
अर्थात वर्णों का समुदाय अनादि काल से सिद्ध है। इस सूत्र के माध्यम से हमारे आचार्य गण सर्ववर्म नाम के आचार्य बताते हैं कि वर्णों का समुदाय अनादि काल से सिद्ध है, अर्थात किसी ने इन वर्णों को बनाया नहीं है, समय समय पर इनको प्रचारित प्रसारित किया गया है। जैसे प्रभु ऋषभ देव ने अपनी ब्राह्मी सुंदरी कन्याओं को भी व्याकरण शास्त्र पढ़ाया, और हमारे अनेक आचार्यों ने ज्ञान को परिमार्जित करने के लिए व्याकरण शास्त्र बनाए। जैनेन्द्र व्याकरण भी पूज्यपाद स्वामी की है। शब्दार्णव चंद्रिका, जैनेन्द्र महावृत्ति और कातंत्र रूपमाला, ऐसे सबसे सरल उसमें है कातंत्र रूपमाला नाम की व्याकरण, जिस व्याकरण का ये पहला सूत्र है। वर्णों का समुदाय अनादि काल से सिद्ध है। अब आपको जानना है कि वे वर्ण कौन-कौन से हैं, कितने हैं, तो आ आ इ ई उ ऊ रि री, माने री एक बार और दीर्घ री, लि ऋ ए ऐ ओ औ, क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, तथा ददना पापा बाबा मा यार शा शा सा हा। ये 47 वर्ण हैं, यानी स्वर और व्यंजन सब मिला करके कुल 47 वर्ण हैं, इनसे ये कहलाती वर्णमाला। अब क्या है, ये हिंदी वर्णमाला भी है और संस्कृत वर्णमाला भी है, इन्हीं पर जब अनुस्वार और विसर्ग आदि हो जाते हैं तो संस्कृत के शब्द बन जाते हैं। तो मूल में ये वर्ण है 47 वर्ण हैं, और इनको आप जानते भी हैं, फिर भी क्रम से आपको इनको याद कर लेना है। अब उसके बाद में आता है दूसरा सूत्र, तत्र चतुर्दशादौ स्वराः,
स्वराः
तत्र चतुर्दशादौ स्वराः,
तत्र चतुर्दशादौ स्वराः।
अब क्या हुआ, किन 47 वर्णों में आदि के 14 अक्षर जो हैं वो स्वर कहलाते हैं, यानी स्वर और व्यंजन दो में विभक्त ये सारे के सारे वर्ण हैं, और उन 47 वर्णों में जो प्रारंभ के 14 वर्ण हैं उनको स्वर संज्ञा है, ये संज्ञा प्रकरण ही है, और संज्ञा माने नाउन, और उन हर एक चीज की किसकी क्या संज्ञा है इस अध्याय में यही सबसे शुरू में बताएंगे। तो इन वर्णों के समुदाय में जो 14 अक्षर हैं उनकी स्वर संज्ञा है, कौन कौन से हैं वो बोलिए, आ आ इ ई उ ऋ ऋ लि ऋ ए ऐ ओ औ। ये 14 स्वर कहला दे। आज कंप्यूटर में मुझे लगता है कि रील री ये खत्म हो गए, री तो अभी मिल जाता है, लेकिन रील री शायद कंप्यूटर से गायब हो गया है। लेकिन जो अनादिकालीन 47 वर्ण है उनमें 14 स्वर भी ये सब अनादिकालीन है, इसलिए आपको इन्हें पढ़ना है कि 14 स्वर कहलाते हैं। जहां भी कहेंगे कि स्वर का ऐसा हो जाता है, ये स्वर दीर्घ हो जाता है, तो आप समझ लेंगे कि इन 14 में से ही कोई ना कोई अक्षर है जिसकी स्वर संज्ञा है। तो स्वर संज्ञा करके बताया कि 14 स्वर है, तो आपको व्याकरण में बहुत प्रारंभ में अब बिल्कुल आपको ये हल्की सरल लग रही होगी, है ना। तो इस सरल व्याकरण को पढ़ करके और तल स्पर्शी ज्ञान संस्कृत के ग्रंथों का प्राप्त कर सकेंगे। तो प्रारंभ में दो ही सूत्र मैं रखती हूँ, सूत्र आप याद करना और सूत्र के अर्थ को भी सरलता से समझ लेना। 2-3 बार जब पढ़ी जाएगी तो व्याकरण स्वतः याद हो जाएगी, और फिर 10-20 सूत्र होने के बाद फिर मैं आपका टेस्ट लूंगी कि किस प्रकार से आपने क्या जाना, क्या पढ़ा। यदि आपकी इसके अंदर कोई क्वेरी है तो आप अपना केवल व्हाट्सएप लिख करके भेजें, फोन कोई भी ना करें। तो मैंने आज आपको ये 2 सूत्र बताए हैं जिनमें 47 वर्ण बताए गए और 14 अक्षरों की स्वर संज्ञा है। ये भगवान अरहंत देव की दिव्य ध्वनि से निश्चित जो हिंदी और संस्कृत के शब्द हैं उन्हीं को यहाँ पर बताया जा रहा है, और संस्कृत व्याकरण का शुभारंभ करके आप सब संस्कृत के ज्ञान में परिपक्व बने, इसी भावना के साथ हम आज के स्वाध्याय को समापन करते हैं। हमारे